बोली सच्चिदानंद घन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगज्जननी अम्बे माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का वातावरण आनंद का विषय परम पावन महापुरुषों की पुरुषार्थ की जो फल रूपी प्रेमपुरी आश्रम का सुंदर ये भवन हम लोगों को प्राप्त हुआ है नित्य प्रति के सत्य का संग करने के लिए और भगवान की हमारे ऊपर कृपा जो हमारा आपका मन सत्संग में लग रहा है क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसा सुंदर भगवान की कृपा और महापुरुषों का आशीर्वाद का अनुभव करते हुए इस सुंदर स्थान की नित्य प्रति की सत्संग सुधा वर्षा का वर्तमान में श्रीमद् भागवत भगवान के सुंदर बाल लीला चरित्र का हम लोग आनंद ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की दिखने वाली साधारण सी बाल चपल लीलाएं असाधारण आध्यात्मिक तत्व को अपने अंदर समेटे हुए सागर की तरह, जैसे सागर के गहरे जल में जो है रत्न होते हैं उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं में आध्यात्मिक रत्नों का जो भंडार है उसका हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और जो हमारा विषय है कि किस प्रकार से भगवान ने एक जो परंपरा जिसको कुल परंपरा जो है नंद बाबा बता रहे हैं कि ये हमारी साधारण नहीं बल्कि कुल परंपरा है, तो ये जो वर्षों से कितने बरस कोई कुल परंपरा को नहीं जानता कि कब से ये परंपरा चली आ रही, तो ऐसी कुल परंपरा को जो नहीं निर्वाह करता है उसको जो है कुल परंपरा का दोष लगता है। इस प्रकार से भयभीत मनुष्य जो है अपनी बहुत सारी परंपराओं का जो है क्या करता है पालन करता है। और शास्त्र का परमेश्वर का एकमात्र कार्य यही है, लक्ष्य यही है कि हमारे जो बहुत से भटके हुए जो हम मार्ग में भटक जाते हैं उन मार्गों को सही कर देना, उन मार्गों को निश्चित कर देना, यही परमेश्वर और शास्त्र का कार्य है। तो भगवान ने जानना चाहा कि ये जो आपकी कुल परंपरा है, ये जो आपने इंद्र को इतना महत्व दे रखा है, सुखदेव जी कहते हैं बचो निशम्य नंदस्य तथा अन्येषां व्रजोक्षाम इंद्राय मन्यु जनयन पितरम प्राह केशवा। भगवान जो है सबके ऊपर जो शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा की बात को सुना और जब संपूर्ण ब्रजवासियों की उन्होंने बात को सुन लिया और इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, क्योंकि इंद्र को अपने जो है पदवी के ऊपर भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि देवताओं की रक्षा करना भगवान का परम लक्ष्य है, लेकिन उन देवताओं के ऊपर भी शासन भगवान का चलता है। इसलिए इंद्र जो अपने वैभव से अपने जो है स्वर्ग के वैभव से अहंकार युक्त हो गए थे, उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए यहां पर जो है भगवान ने, क्योंकि दूसरे के अहंकार को नष्ट करने का बहुत सुंदर तरीका भगवान ने खोजा कि अगर आप किसी का अहंकार नष्ट करना चाहते हैं तो उसको क्रोध दिलवा दो, जब उसको क्रोध आ जाएगा तो उसका अहंकार क्या हो जाता है। यहां देखो ये तरीके हैं शास्त्रों के, हमारा किसी के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं इंद्राय मन्यु जनयन पितरम प्राह केशवा, कहते हैं इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए उन्होंने नंद बाबा से जो है प्रार्थना करनी प्रारंभ की, क्योंकि जो बहुत सारी व्यर्थ की परंपराएं जिसका हमको कोई वास्तविकता में हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। आपने देखा होगा कि हमारे यहां बहुत से तीज व्रत त्यौहार होते हैं, उसमें आज के दिन ऐसा बनना ही है, चाहे वो आपको हजम हो या ना हो, लेकिन वो क्या है, बोले ये कुल की हमारी क्या है परंपरा, उसको हमको तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। और भगवान कहते हैं यही तो जो है भक्त का और ज्ञानी पुरुष का कार्य है, जो व्यर्थ की परंपराओं की तोड़ने की क्या कर सके, हाँ साहस कर सके, उसकी हिम्मत कर सके। तो महाराज जो व्यर्थ की परंपराएं हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने जीवन में लादी हुई हैं, और चूंकि किस लिए लादी हैं, बोले ऐसा होता आ रहा है ना, जैसे भगवान के दर्शन करने जाना है तो सोमवार का दिन किसके लिए निश्चित है, भोलेनाथ के लिए, लाइन लगा के खड़े रहेंगे सोमवार को। अब मंगलवार को क्या भोलेनाथ दुनिया से वापस चले जाते हैं, मंगलवार को गणेश जी निश्चित हैं, बृहस्पतिवार को साईं बाबा निश्चित हैं महाराज, है ना, और लाइन लगाएंगे महाराज। और कहीं कहीं तो ऐसी दुर्गति देखने को मिलती है, जब विशेष त्योहार होते हैं हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, हमने गणपति को देखा महाराज कि आप गणपति के मंदिर में जाओगे तो गणपति के समय ही सारे दर्शन करने लोगों को, उसके बाद गणपति के दरबार में आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा, है ना, यानी गणपति के समय ही गणपति आते हैं, बाकी छुट्टी पे चले जाते हैं क्या है? और वहां जाकर पहले तो महाराज पूजा की थाली लेंगे, और फिर जो है उस सुंदर सजी हुई फूल के उस फूलों की उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा रखा हुआ है, धूप दीप रखी हुई, अब वहां तो ना धूप होना ना दीप होनी, और वो क्या करते हैं हमने देखा, वो थाली पूरी की पूरी फेंक के किसको मारते हैं परंपरा निर्वाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं परंपरा, ऐसे परंपरा निर्वाह का कोई फायदा है? आप क्या, आप किसी के घर में जाओ और दरवाजा खोलते ही वो महाराज आपके ऊपर लड्डू फेंक के मारे हैं, और जो है उसके बाद एकाएक दौड़ता हुआ आए और आपके तिलक लगा दे और आपके पैर के पास फटाक से नारियल फोड़ दे हैं, और उसके बाद आपकी क्या उतारने लगे, हाँ, और सिर के ऊपर आपके रख दे केला एक हैं, और महाराज आपकी क्या दशा होगी आप स्वयं जानते। अच्छा बताओ उसके घर में जाना पसंद करोगे दोबारा? लेकिन हम भगवान के संग तो ऐसे ही करते हैं, है? आपने देखा होगा नहीं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, फल फूल केला जब सब शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देंगे, परंपरा है सब भगवान। अरे भाई एक बात बताओ, तुम किसी को खिलाओगे भगवान क्या सिर के ऊपर रख के खिलाओगे, है? अरे भाई तुम किसी के यहां जाओ और वो थाली लाके तुम्हारे सिर के ऊपर रख दे, है? कैसा लगेगा? हम भगवान के ऊपर जाके महाराज बेल पत्र क्या, फूल क्या, फल क्या, मिठाई क्या, सब क्या कर देते हैं, सिर के ऊपर चढ़ा देते हैं जाके। जबकि भगवान को निवेदन करने का तरीका है कि भगवान के सामने जाके थाली को रखो, जो कुछ चढ़ाना है नीचे चढ़ाओ, भगवान के सिर पे मत चढ़ाओ, लेकिन क्या है परंपरा है, बोले हमारे बाप दादा यही करते चले आ रहे हैं, व्यर्थ की परंपराएं, जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं है। तो इस प्रकार की परंपराओं को बंद करने के लिए कि भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी, क्योंकि परम शांत परम ब्रह्म जो है परम शांत है, और परम शांत है तो जितनी शांति से आप उनकी आराधना करोगे उतनी ही आपको जल्दी सिद्धि की क्या होगी, प्राप्ति होगी, और जितनी अशांति से करोगे उतना ही आपको शांति मिलने की बजाय क्या मिलेगा, अशांति मिलेगी। जो दिखा जाता वर्तमान समय में महाराज, है ना, चाहे किसी को कोई जरूरत हो या ना हो, लेकिन आप स्वभाव बना हुआ कि बृहस्पतिवार के दिन जाकर साईं बाबा का मंदिर दिखाई दे जाए, वहां नारियल फोड़ना ही फोड़ना, चाहे अरे पूछ तो लो साईं बाबा से कम तुम्हारे दांत आएं भी कि नहीं है, है ना, बेचारे बूढ़े और उनको नारियल फोड़ के क्या करेंगे तुम्हारे नारियल का, लेकिन आदत पड़ी है कि नारियल फोड़ना ही है। कितनी बर्बादी हम लोग अपने धन की करते हैं, सामान की करते हैं, अरे वही नारियल किसी गरीब को दे दो तो उसके काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वहीं जाकर फोड़ना है, क्यों फोड़ना है, ये परंपरा है हमारे यहां जी, हमने देखा है बर्बादी। अब अन्न की बर्बादी जरा हमारे भगवान की लीला देखो, भगवान जो है एक दाना, द्रौपदी से कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, एक दाना मुझे खिलाओ खाली, और उससे आधे संसार को तृप्त कर दिया, और हम मंदिरों में जो है लाखों रुपए का सामान व्यर्थ में, केवल क्या है ऐसा चला आ रहा परंपरा है, ऐसी परंपरा का भगवान से वास्तविकता में कोई लेना देना खाली हाथ चले जाओ, भगवान कोई तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहे, लेकिन उसकी बर्बादी मत करो। जिसको देना है, हमने देखा है सैकड़ों लीटर दूध लोग बर्बाद करते हैं, व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, कोई उसका उपयोग नहीं। नाली में बहने के अलावा उस दुग्ध का कोई उपयोग नहीं है। तो ये जो व्यर्थ की परंपराएं हैं, भगवान ने ये जो लीला रची अपनी समझाने के लिए, ये जो इंद्र को आप प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सत्य प्रभु जो है कुछ और है। तो भगवान ने जो है, कल हमने आपको जज बनाया था और नंद जी का पक्ष आपको सुना दिया कि नंद बाबा क्या कहना चाहते हैं अपनी कुल परंपरा को समझाते हुए कि इंद्र ही मेघों के स्वामी हैं और वही वर्षा करते हैं, उन्हीं की कृपा से हमको ये धन धान्य प्राप्त होता है और उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन चलता है। इस प्रकार से नंद बाबा ने अपना पक्ष रखा। लेकिन गीता के माध्यम से भी हमने आपको सुनाया था और उसी चीज को है ना जो है यहां पर भगवान ने, क्योंकि जितना भी भौतिक संसार हमको दिखाई देता है, कि जो कुछ भी संसार के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कर्मों का ही खेल है। कर्म के अतिरिक्त यहां कोई दूसरी चीज, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और पूरा का पूरा आपको जो है तृतीय अध्याय के माध्यम से गीता के हमने समझाने की कोशिश की थी कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति, यज्ञ के द्वारा यज्ञ के संग प्रजा की उत्पत्ति की और कर्म जो है उसको प्रधान रूप दिया गया कि जैसे जैसे आपके कर्म होंगे उसी उसी प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होगी। उसके लिए आपको कोई विशेष अलग से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। जो मंदिरों में लगी हुई लंबी लंबी लाइनें आप देखते हैं ना, ये वर्तमान में है, पहले ऐसा कभी हमारे यहां नहीं होता था कि इस प्रकार से भगवान को मनाने के लिए लाइन लगानी पड़े। भगवान तो बड़े प्रेम से भजने की चीज है हमारा। तो जैसे तुम्हारे कर्म, अग्नि में यदि आप चंदन का बुरादा डालेंगे तो महाराज आपको क्या मिलेगी, चंदन की सुगंधि का आनंद मिलेगा, और उसी में महाराज उसी जलती हुई अग्नि में यदि आप टायर का टुकड़ा डालेंगे तो कौन सी सुगंधि आएगी, जलते हुए केमिकल की सुगंधि को ही आपको सूंघना पड़ेगा महाराज, वहां उसमें चंदन की खुशबू नहीं आने वाली। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं, हम ऐसा ही चाहते हैं महाराज कि डालें तो हम टायर का टुकड़ा और लेकिन उसमें से क्या आए, हाँ चंदन की सुगंधि निकले। सब लोग यही चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ, इसीलिए बार बार हमारे यहां कर्मों की गति के ऊपर विवेचन, गहना कर्मणों गति है ना, क्योंकि वेद जो है 80% आपको बताया था कर्म है ना, यज्ञ आदि जो भी हमारे कर्म हैं उनके ऊपर, उसके बाद उपासना और ज्ञान कांड तो बहुत छोटा सा है। ज्ञान के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, हमको सारा समय चाहिए अपने कर्मों का। यानी जैसे आपका ये जो आप जिस हाल में बैठकर, जिस सत्संग भवन में बैठकर आप जो है इस सत्संग का आनंद लेते हैं कि किस लिए लेते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ सुसज्जित सुव्यवस्थित मिलता है। अब यहीं पर अगर दुर्व्यवस्था हो, कुर्सियां पड़ी हो, दरी अलग पड़ी हो, माइक अलग रखा हो, और 7:30 से 8:30 के समय आकर आप आधा टाइम कुर्सी ठीक करते रहो और आधा टाइम माइक ठीक करते रहो, तो फिर क्या होगा, कुछ मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा महाराज। तो इसी प्रकार से अगर हमारा कर्ममय संसार बिल्कुल ठीक है ना, और उसके बाद हमारा उपासना कांड जिसको हम लोग कहते हैं वो सुव्यवस्थित है, तो फिर ज्ञान में देर नहीं लगती। जब हमारे कर्म ही अव्यवस्थित हो जाएंगे और वहां पर उपासना का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, और हम कल्पना करें कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये केवल कल्पना मात्र हो सकती है। अपने आप को हम ज्ञानी घोषित कर सकते हैं, लेकिन महाराज इसके लिए आपको जो प्रक्रिया हमारे शास्त्रों की, उसी से गुजरना पड़ेगा। पहले सबसे कर्म की जो आवश्यकता, क्योंकि स्वयं आप अपने कर्मों के फलों को इतना प्यार करते हैं महाराज कि आप अपने अपमान को बर्दाश्त करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कोई यहां पर ऐसा जो अपने अपमान को बर्दाश्त कर सकता हो? देखो, तो महाराज कहने का तात्पर्य यह है, भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि हे पिताश्री, सबसे पहले तो इस कर्म में संसार के बारे में समझ लो, है ना, क्योंकि ज्ञान जो है परम शुद्ध अवस्था है, वहां पर ना कोई जन्म है ना कोई मरण है, वहां जन्मना है न जीना है न मरना है। और लेकिन जो ये जीने मरने और मध्य की जो अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं का सारा खेल ये सब कर्म के ऊपर है। और इस कर्म में संसार में आपको हर चीज की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कहते हैं पिताश्री, सबसे पहले तो कर्मणा जायते जंतु, यानी हमारा आपका जो जन्म है, भगवान कहते हैं प्राणी का कोई भी, 84 लाख योनियों की बात यहां पर हो रही है कि इस संसार में जो भी हमारा मरना जीना है, यानी जन्म लेना या मरना है, या सुख दुख, या हमारे जीवन में जो मंगल आते हैं, इन सब का कारण जो है कर्म ही है। कर्म से अलग कोई अलग दुनिया नहीं है कि हमारे सुख दुख को या हमारे मंगल को कोई दूसरा प्रदान कर सके। और भगवान कहते हैं, जरा देखो, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणाम् कर्तारं भजते सोपि नाह्य कर्तु प्रभुर्हिसः। कहते हैं परमेश भगवान जो है नंद बाबा से पूछ रहे हैं, यदि कर्मों को ही आप सब कुछ ना माने, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, भगवान कहते हैं मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि वृष्टि के जो देवता हैं इंद्र हैं और वही इनके ऊपर शासन करते हैं, यदि कर्मों से अलग किसी कर्म फल देने वाले ईश्वर की भी कल्पना कर ली जाए। भगवान कहते हैं कि मान लो हम, मेरी दृष्टि से तो जो कुछ भी है सब कर्मों का खेल है, जो जस करे सो तस फल चाखा, तो महाराज जो जैसा करता है वैसा ही उसको भरना है, कोई भी इससे बचने वाला नहीं है। और इसीलिए जो आपके प्रश्न का उत्तर है, आपने देखा होगा बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिनको बड़ी बड़ी बीमारियों को जो है अपने शरीर में क्या करना पड़ता, भोगना पड़ता। लोग पूछते हैं महाराज महापुरुष के शरीर में ये रोग ये भोग कहां से आए, तो उसका उत्तर है ये कि जो जिसने जो किया है उसको चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, दोनों को क्या करना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा महाराज, इससे वो बचने वाला नहीं है। ये बात अलग है कि ज्ञानवान के ऊपर इन सुखों दुखों का कोई प्रभाव नहीं होता, ये ज्ञानावस्था के लक्षण अलग चीज है। रोग आएगा, उस रोग को भोगना, कर्ता भोक्ता की जो अवस्था वेदांत की भाषा में कहा जाता है, वो एक अलग चीज है। जब हम उसके कर्ता भोक्ता हो जाते हैं तो वो दुख सुख हो जाता है, लेकिन ज्ञानावस्था में वो सब चीजें हमारे शरीर में आती हैं, लेकिन वो ज्ञानवान उनको किसी भी प्रकार से अपना नहीं मानता, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि यदि कर्मों को अलग से फल देने वाला कोई ईश्वर अलग मान लिया जाए, कि कोई अलग से ईश्वर है, अस्ति चेद ईश्वरः कश्चित्, हो सकता है कि हमारे फल देने वाले कोई ईश्वर अलग मान लो, लेकिन पिताजी जरा एक बात बताओ, कहते हैं फल रूपन्य कर्माणम, क्या वो इसके अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे कर्मों के फलों को बदल दे, फिर तो सारी सृष्टि क्या हो जाएगी, है ना। जैसे आपने बचपन में या कभी कथा सुनी होगी, मुंशी प्रेमचंद की, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर राजा, है ना। फिर तो महाराज क्या हो जाएगा, है ना, फांस गलती किसी ने की और सजा किसी को, यानी फांसी का फंदा जिसके गले में आ जाए, साइज जिसकी आ जाए, चाहे वो महात्मा हो और चाहे वो चोर हो, जिसके गले में आ जाए उसी को फांसी पे लटका दो, फिर तो ये स्थिति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो महाराज कहने लगे कि अगर ईश्वर को भी मान लिया जाए, हाँ ध्यान देना, बड़ा बड़ा ही गूढ़ विषय है और समझने योग्य चीज है, है ना। सोचते हैं ना कि हमारे कर्मों के फलों का निर्धारण ईश्वर करता है, ईश्वर कुछ नहीं करता, उसने तो महाराज ऑटोमेटिक प्लांट बना दिया। जैसे भगवान सूर्य नारायण उदय हो गए, अब आप चाहे महाराज कोई भी अपने खेत में भाजी लगाओ, है ना, कुछ भी वो महाराज वो तो सूर्य नारायण आपके पालक को भी वही धूप मिलेगी, आपके गोभी को भी वही धूप मिलेगी, आप जो भी लगाओगे सबको, फूल पत्ती सबको वही धूप मिलने वाली है। वो हमारे किसी भी कर्म का निर्धारण नहीं करते कि मैं केवल पालक को ही धूप दूंगा या इसको ही धूप प्रदान करूंगा, ऊर्जा प्रदान करूंगा। जो आप लगाओगे उनके लिए ऊर्जा समान है। तो भगवान ने तो महाराज अपना ऑटोमेटिक प्लांट लगा दिया, अब आपके कर्मों की बात है। तो भगवान कहते हैं यदि अलग से ईश्वर मान लिया जाए कि हमारे कर्मों के फल देने वाले अलग ईश्वर हैं, तो महाराज वो भी अगर फल देंगे तो हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही तो देंगे, क्योंकि जो बुरा करेगा उसको बुरा फल मिलेगा और जो अच्छा करेगा उसको निश्चित है कि नहीं है। अरे भाई, जो खेत में जो आप बोगे हैं, आप खेत में अरहर की दाल, तुअर की दाल बो और कल्पना करो कि ये चने की दाल में बदल जाए तो कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो जो हम बोएंगे वही हमको क्या करना है, काटना है। ये निश्चित है महाराज, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि जब किमिन्द्रेणेह भूतानाम स्वास्वा कर्मानुवर्तिनाम अनिशेनान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम। भगवान कहते हैं पिताश्री, जब संपूर्ण प्राणी अपने ही कर्मों के फल को भोग रहे हैं तो किमिन्द्रेण कहते हैं, किमिन्द्रेण है कहां, ये इंद्र कहां से बीच में आ गया महाराज? कहते हैं क्योंकि जब सब पूर्व संस्कारों के अनुसार ही है ना, भगवान ने गीता में जो कहा है कि जो भी है सब अपने अपने स्वभाव को प्राप्त हैं और कोई अपने स्वभाव को छोड़ता, हाँ, इस जगत की ये विशेषता है। इसीलिए आपने जो है श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय जिसको हम लोग कहते हैं दैवी संपदा और आसुरी संपदा, है ना, दैवी संपदा और आसुरी संपदा हम लेकर पैदा होते हैं। अभिजातस्य भगवान कहते हैं लेकर के पैदा होता है, यानी पूर्वकृत जो हमारे कर्म हैं उसके अनुसार ही हमको ये दैवी संपदा और आसुरी संपदा क्या होती है, प्राप्त होती है। और इसीलिए आपने देखा कि आप जीवन भर परेशान हो जाओ लेकिन आप दूसरे के स्वभाव को बदल कोशिश करके मर जाओ महाराज, क्रोधी के स्वभाव को आप बदल नहीं सकते और जिसका शांत स्वभाव है उसके आप शांत स्वभाव को बदल नहीं सकते महाराज। कहते हैं स्वभावतंत्रो ही जना स्वभाव मनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वं सदैवासुरमानुषम्। भगवान कहते हैं साधारण की तो बात ही क्या की जाए। कहते हैं पिताश्री, पूर्व संस्कार जो हमारे, जिसको हम लोग स्वभाव कहते हैं, उसके अधीन ही ये मनुष्य, और मनुष्य क्या कहते हैं, देव असुर और मनुष्य सब के सब, यानी सारा जगत जो कुछ भी है जैसा है वो अपने स्वभाव में स्थित है, उसको आप बदल नहीं सकते। चंद्रमा को आप गर्म नहीं कर सकते और सूर्य को आप कर सकते, लगाओ विज्ञान का जोर और महाराज चंद्रमा को गर्म कर दो और सूर्य को क्या कर दो, ठंडा कर दो। जिसको जो स्वभाव प्राप्त हो गया, उसी हिमालय से निकली हुई गंगा वो गौरवर्ण है महाराज, और उसी हिमालय से निकली हुई यमुना जो है कैसी है, श्याम वर्ण। देखो अपने अपने स्वभाव में स्थित है। यमुना जी भगवान से ये प्रार्थना करने नहीं गई कि मैं गंगा की बहन हूं तो मुझे जो है पहले गोरा बनाओ, क्यों भाई? देखा आपने कहीं पर आता ऐसा विषय कि यमुना जी ने भगवान से प्रार्थना की हो कि आपने मुझे जब पत्नी रूप में स्वीकार किया तो पहले मुझे गंगा की तरह क्या बनाओ, गौर वर्ण बनाओ। जैसे स्वभाव में जो है उसी स्वभाव में वो आनंदित है, अलावा मनुष्य के केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, ध्यान देना। ये जो गहना कर्मणों गति भगवान बता रहे हैं ना, इस दुनिया में केवल मनुष्य के अलावा सारी 84 लाख योनियां निष्काम भाव से काम कर रही, केवल एक मनुष्य जाति ऐसी है जो बिना स्वार्थ के कार्य, बिना स्वार्थ के आप कुछ भी करने को तैयार नहीं है, सुर नर मुनि सब कह यह रीति स्वार्थ लाग करें सब। ये है दशा महाराज मनुष्य की। संपूर्ण प्रकृति महाराज पेड़ आपसे कोई पैसा नहीं मांगता, ना ऑक्सीजन देने का, ना फूल देने का, ना फल देने का। गाय आपसे दूध का कोई पैसा नहीं मांगती है महाराज। नदी आपसे जल का कोई पैसा नहीं मांगती है। भगवान सूर्य नारायण अपनी ऊर्जा का कोई पैसा नहीं मांगते हैं। अलावा मनुष्य के, मनुष्य इतना भी कार्य करेगा तो उसके बदले में कुछ चाहता है, ध्यान देना। ये जो कर्मों की गति है उसका परिणाम यहां पर दिखाई दे रहा है कि हम ये जो तरह तरह के ईश्वर कल्पित करके और उसके बाद उनकी आराधना करके अपने सुखों दुखों को जो है व्यवस्थित करने का जो प्रयत्न करते हैं, है ना, ये जो परिणाम हमको दिखाई देता है, ये जो देखते हैं ना आप लंबी लंबी लाइनें मंदिरों में लगी हुई, ये उसका परिणाम है। किसका परिणाम? जब हमने जो है भगवान के प्रति अपने निष्काम कर्मों को, है ना, जो है गीता में भगवान ने कहा नहीं कि ज्ञानवान जो है कर्म किस लिए करता है, हैं, निष्कर्मता के लिए, है ना, संग को यानी जो है आसक्ति को छोड़ने के लिए, हैं, और योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्तात्म शुद्धये, यानी योगी लोग यानी ज्ञानवान जो है कर्म किस लिए करता है, जिस प्रकार से प्रकृति का हर अंग, है ना, कोई भी चीज आपसे कुछ भी नहीं मांगती है और सबके लिए बराबर है, चोर हो, डाकू हो, महात्मा हो, सूर्य नारायण सबके लिए बराबर है, वायु सबके लिए बराबर चल रही है महाराज, समुद्र का जल सबके लिए बराबर है, वर्षा का जल सबके लिए बराबर है, गाय का दूध चाहे जो चोर दुए चाहे महाराज महात्मा दुए दोनों को पिलाती है, किसी को मना नहीं करती, समान भाव से सब जी रहे हैं अलावा मनुष्य के। और इसका परिणाम यह है कि जब हम इस प्रकार से अपने जिसको कहते हैं स्वभाव का परित्याग करके हैं विकृत रूप को प्राप्त हो जाते हैं, हमारे कर्म विकृत हो जाते हैं, परिणामतया आपको मंदिरों में लाइन में क्या होना पड़ता है, अन्यथा। तो कबीरदास जी कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ध्यान देना, जिस दिन तुम्हारा मन महाराज स्वभावस्थ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उस दिन भगवान को तुम नहीं बल्कि भगवान तुमको ढूंढेंगे। कैसा लगता है सुनने में? डर लगता है ना, लेकिन ऐसा ही है महाराज, है कि नहीं? अरे राजा को भी अपने संग कैसा चाहिए, सहायक चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मालूम है जो विश्व के दूसरे नंबर के अमीर माने गए हैं, क्या नाम उसका, वॉरेन बफेट उनका नाम है, विश्व के शेयर बाजार के बहुत बड़े कारोबारी हैं महाराज, इस दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर, अनमैरिड, कोई संतान नहीं, कोई परिवार नहीं, खरबों डॉलरों में संपत्ति है महाराज, और अपनी संपत्ति को संभालने वाला उनको पता कहां मिला? अमेरिका में नहीं मिला, कहां मिला? भारत में। कोई जैन है लड़का, उसको यहां से लेके गए महाराज, जरा सोचो, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आपके अंदर यदि गुण है तो भगवान भी आपको क्या करेंगे, ढूंढेंगे, और यदि हम कर्मों का जो है क्या करेंगे, विकृति कर्मों में लाएंगे, तो हमको भगवान को ढूंढना पड़ेगा, मंदिर में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी महाराज। उस व्यक्ति ने वॉरेन बफेट को नहीं ढूंढा, बल्कि वॉरेन बफेट ने महाराज उसको ढूंढा, तुम हमारी संपत्ति को समझाओ संभालो। और महाराज उनके माता पिता से मिलने आए, देखो जरा आपका भारत क्या दिया हमारे ऋषि मनीषियों ने, हैं, और महाराज उन्होंने उनके माता पिता से एक प्रश्न किया कि आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा ही एक लड़का मुझे और दे सकते हैं? लेकिन मैं खुद उत्तर देता हूं कि आपके पास ऐसा दूसरा लड़का नहीं होगा। बोलो, गहना कर्मणो गति, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। भगवान कहते हैं पिताश्री सब कुछ अपने स्वभाव में स्थित है। जब सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार, चाहे वो शत्रु हो या मित्रता का भाव हो या उदासीन का भाव है या शरीर का प्राप्त होना या शरीर का छूटना है, ये सब का सब कहां तक कहूं, कहते हैं कर्मैव गुरुरीश्वरः। भगवान ने देखो अंतिम जो अपना कर्म के प्रति निर्णय दिया, यहां पर कहते हैं देहानुचावचा जंतु प्राप्यो सृजति कर्मणः शत्रु मित्रोदासीना कर्मैव गुरुरीश्वरः। भगवान कहते हैं कर्मों के अनुसार ही ये जीव उत्तम अधम या जो भी शरीर प्राप्त होता है सब उसके अनुसार ही मिलता है। कर्मों के अनुसार ही हम शत्रु मित्र और उदासीन का व्यवहार करते हैं, है ना। जो हमारे संग जैसा व्यवहार करता है हम उसको उसी प्रकार से शत्रु मित्र और उदासीन मान लेते हैं। और कहते हैं भगवान कि पिताश्री मैं आपको कहां तक समझाऊं, कर्मैव गुरुरीश्वरः, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा सनातन धर्म। क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि जब शरीर है और शरीर के धर्म के संग हम जुड़े हुए हैं, देखो है ना, तो महाराज यहां पर संपूर्ण सत्ता हमारे कर्मों की ही है। अरे भाई, भगवान भी दर्शन उसी को देते हैं जो भगवान के लिए क्या करता है, तपस्या करता, या बिना तपस्या वाले के लिए प्रकट हो जाते हैं। जो तपस्या करता है उसी के सामने भगवान प्रकट होकर पूछते हैं, बताओ तुमको क्या चाहिए, है ना। तो जो कुछ भी है भगवान कहते हैं कर्म ही जो है गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताश्री मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार जो भी उसको रूप मिला है, ये ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि अपने जो भी स्वभाव आपको प्राप्त हो गया वो बदल नहीं सकता, और उसको अगर आप बदलने की चेष्टा करेंगे तो केवल हानि ही होगी, उसमें आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। यानी जो जो स्वभाव, जैसे जिस प्रकार से नाट्यशाला है, ये संसार नाट्यशाला है, अब जिसको जो रोल मिल गया है, जो नाटक करने के लिए आपको जो है अभिनय करने के लिए पात्रता दे दी गई है, उसका पूर्ण पात्रता से निर्वाह करो, इसी में आपकी क्या है, भलाई है। और अपनी पात्रता को निर्वाह करने की बजाय अब महाराज वहां सब एक दूसरे की बराबर बराबर हो जाए तो कैसे काम बनेगा। हनुमान को सेवा करने की पात्रता मिली, उन्होंने सेवक धर्म को निर्वाह करके दिखाया। भगवान राम को स्वामी बनने की महाराज पात्रता मिली, भगवान ने स्वामी बन के दिखाया महाराज, है ना। तो ये तरीका है जीवन जीने का, भगवान कहते हैं। कहते हैं जिसका जो रूप जैसा मिला है, और इसी को जो है भगवान ने गीता की भाषा में दो दो बार भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो भी आपको धर्म का मतलब यहां पर क्या है, जो भी स्वभाव आपको मिला है महाराज, आप बिना पढ़े लिखे हैं तो बिना पढ़े लिखे बने रहो, अगर आपको भगवान ने पढ़ने की सुविधा दी है तो महाराज उसकी ऊंचाई पे जाओ, पढ़ने की ऊंचाई पर जाओ, लेकिन एक दूसरे के धर्म में प्रवेश करोगे तो महाराज फिर क्या होगा, पात्रता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि जो जो स्वभाव प्राप्त हुआ है अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो महाराज फिर क्या होगा। यहां पर जो भगवान ने सबसे बड़ी बात बताई है कि वास्तविकता में मनुष्य का जो कार्य है, तस्मा संपूजयेत कर्म स्वभावस्था स्वकर्म कृत अंजसायेन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम्। इसलिए पिताश्री मनुष्य को क्या चाहिए, अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार या जो भी उसको वर्ण क्रम प्राप्त हुआ उसके अनुसार मनुष्य की जो जीविका, जिस सुगमता से जो उसको आजीविका मिली है, उसी के माध्यम से वो अपने जीवन को जो है समझे, और वही जीविका ही उसकी इष्टदेव है महाराज। जो सबसे बड़ी बात यहां पर है कि वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम्, वही उसके जीवन का इष्टदेव है। हाँ, ध्यान देना, ये मूर्तियां हमारी इष्टदेव नहीं है, सबसे पहले हमारे इष्टदेव हैं हमारा कर्म आजीविका के रूप में यानी पेट पालने के रूप में आपको जो आजीविका मिली है वही आपका सबसे पहले भगवान या इष्ट देव हैं, उपास्य जिनको हम कहते हैं महाराज। कहते हैं जिस प्रकार से भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई स्त्री जो है अपने पति को छोड़कर दूसरे के प्रति जो है आकर्षित हो जाए तो वो उसकी कहीं पर भी शांति की उसको प्राप्ति नहीं होती, इसी प्रकार से कहते हैं आजीवै कतरम भावम यस्त्वन्यम उपजीवती, यदि अपनी आजीविका को छोड़कर वो दूसरी किसी चीज को भजने की चेष्टा करता है तो महाराज उसको जो है ये दोष लगता है। हमारी जो आजीविका है जरा इसको समझने की चेष्टा करें, किसी व्यक्ति का दूध का व्यापार है और उत्तर दीजिए जरा आप लोग, है ना, क्यों भगवान यहां पर आजीविका को भगवान मानते। अब उस दूध में उसने महाराज मिलावट कर करके करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों रुपए कमा करके महाराज एक सुंदर सा सोने का छत्र खरीद के भगवान बाबुलनाथ को चढ़ा दिया, क्यों भाई, समाज के हित में है या अहित में है? वो सोने का छत्र ना चढ़ाकर केवल समाज को शुद्ध दूध पिलाए वो ज्यादा अच्छा है या करोड़ों रुपए कमाकर सोने का छत्र चढ़ाना बढ़िया है, क्या कहते हैं आप? तो जो हमारे यहां गति दिखाई दे रही, ये जो मंदिरों की लंबी लंबी लाइनें हैं महाराज, ये परिचय दे रही हैं कि हम कर्मों में कितना गिर चुके हैं, है ना, ध्यान देना। भगवान कहते हैं कि वास्तविकता में पिताश्री देखो क्या कहते हैं, वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवा वैश्यस्तु वार्तया जीवेन क्षुद्रस्तु दुर्सेवया। कहते हैं ब्राह्मण जो है वेदों के अध्ययन अध्यापन से ये आजीविका निर्धारित की गई महाराज, क्षत्रियों का कार्य है जो है पृथ्वी पालन करना, वैश्य का कार्य है वार्तावृत्ति और शूद्र का कार्य है सबकी सेवा करना, ये जो है नियम बनाए गए, यानी यथा यथा योग्य, जिसको भगवान ने बुद्धि दी है वो बुद्धि से सेवा करे, जिसको भगवान ने बाहुबल दिया है वो बाहुबल से सेवा करे, जिसको महाराज चतुरता दी है व्यापार की वो जो है बुद्धि की चतुरता से व्यापार करे, और जिसके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है वो दूसरे की सेवा करके अपने जीवन का क्या कर सकता है। यहां पर कोई बड़े छोटे की बात नहीं है कि सेवा करने वाला छोटा है या महाराज जो है वेद पढ़ाने वाला बड़ा है, नहीं तो महाराज हमारे यहां कभी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ सकते थे? एक राजा का पुत्र और एक के यहां खाने को रोटी नहीं, दोनों संग संग एक ही गुरुकुल में, ये सनातन धर्म है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने आजीविका का निर्धारण करने का परम स्वतंत्रता का अधिकार है। भगवान कहते हैं वैश्यों की जो ये तीन वृत्तियां हैं, नंद बाबा को समझा रहे हैं कि ये जो वैश्यों की जो चार प्रकार की वृत्तियां, कहते हैं कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम तुर्य मुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गो वृत्त योनिशम। भगवान कहते हैं कि प्रभु पिताश्री वैश्यों की चार वृत्तियां हैं ये, वार्ता वृत्ति जो कहलाती है, नंबर एक है कृषि के द्वारा, नंबर दो है वाणिज्य यानी चीजों का खरीदना और बेचना, नंबर तीन है गोरक्षा यानी गौओं का पालन या पशुओं का पालन आप कह लो उसके पूर्ण रूपेण जो उसका विवेचन किया जाए तो केवल गोरक्षा ही नहीं, पशु तो भगवान ने बहुत बनाए, और उसके बाद है ब्याज यानी धन को देना और उसके बदले में ब्याज को लेना, ये जो है चार प्रकार की वृत्तियां निर्धारित की गई महाराज वैश्य के लिए। तो भगवान कहते हैं हम लोगों को तत्र वयम गो वृत्त योनिशम, हम लोगों को उसमें से इन चार वृत्तियों में से गो पालन का जो है रूप स्वभावता हमको प्राप्त है, क्योंकि हम वंश से ही जो है गौ पालन करते चले आ रहे हैं, स्वभावता प्राप्त है ना। तो इसलिए इस संसार में जो सत्व रज तमाम की स्थिति है, इस संसार में जो कुछ भी है ये सब रजोगुण की प्रेरणा से उत्पन्न होता है, और रजोगुण की प्रेरणा से ही ये मेघ जल बरसाते हैं और उसी से महाराज अन्न होता है और उन अन्न से ही जीवों की उत्पत्ति होती है महाराज। तो पिताश्री ये क्रम है कर्म का। हाँ, ये संसार में वास्तविकता में जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे कर्मों के फलों को भगवान बदलते हैं या भगवान दे सकते हैं, भगवान कहते हैं मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, जो कुछ है सब तुमको ही करना है महाराज। तो जैसा जैसा आपका स्वभाव वैसी वैसे फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो पिताजी से निवेदन किया महाराज अपने पिताश्री से भगवान ने, नाना पुरो जनपदा ना ग्रामा ना ग्रहा वयम नित्यम बनौक सस्तात वनशैल निवासिना। कि हे पिताश्री, हमारे पास ना पुरो ना जनपदा, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना ही कोई बड़े बड़े नगर हमारे अधीन है, और हमारे पास तो महाराज ना विशेष कोई गांव है और ना ही हमारे पास बहुत सुंदर घर है, ना ग्रामा ना ग्रहा वयम, हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं। नित्यम बनोक सस्तात हेतात, हमारे हम तो सदा बनवासी ही हैं, बनो बनो में महाराज स्वयं गोकुल से वृंदावन में आए हैं सारे के सारे, तो हमको तो बनों में भटकना है, बन पहाड़ों में, बन शैल निवासिना, हम तो बनों में और पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा जो मुख्य आजीविका है हमारी वो तो महाराज गऊ का पालन है। इसलिए हमारे इष्ट देव कौन है, कहते हैं इन गऊओं का पालन ही हमारा इष्ट देव उपासना है। जान देना, भगवान ने शौक नहीं था भगवान को कोई गाय चराने का या गऊ पालने का। यहां पर भगवान ने यह दर्शाया है कि जो आपकी आजीविका है वही आपका आराध्य देव है, इसलिए भगवान स्वयं गायों को क्या करने जा रहे हैं, चराने जा रहे हैं महाराज, उन छोटे छोटे बछड़े बछियों को भगवान चराने जा रहे हैं, अन्यथा भगवान का क्या कार्य था हमारा। ये समझाने के लिए जिस कर्ममय संसार में यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, ये जो लंबी लंबी लाइनें नारियल चढ़ाना और महाराज जो है सोने चांदी के छत्र चढ़ाना, ये तो महाराज नकारा लोगों का काम है। जान देना, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है महाराज, सोने का छत्र चढ़ाया, चांदी का छत्र चढ़ाया, लेकिन ये सब कर्महीनता का परिचय है। भगवान तो महाराज गीता में शुद्ध भाषा में भगवान ने कह दिया, पत्रम पुष्पम फलम, तो इतने से कौन प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबरी ने क्या खिलाया, कंदमूल फल जो बीन बीन के रखे थे महाराज, उसी से सबरी ने भगवान को क्या कर लिया, प्रसन्न कर लिया महाराज, है कि नहीं। अब देखो महाराज, और साधारण व्यक्ति जो है वो दुनिया भर के यत्न करता है महाराज, पैदल जा रहा है, कोई कहीं भागा जा रहा है, कोई कहीं लाइन लगाए हुए, और बड़े प्रसन्न होते हैं कि ढाई घंटे लाइन में लगकर भगवान के क्या हो गए। और पंडरपुर में तो पंडरी ने महाराज भगवान को कैसे खड़ा कर दिया, आज तक खड़े हुए हैं कमर में हाथ रख, बोले मैं माता पिता के क्या कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी देर खड़े हो जाओ, भगवान आज तक खड़े हो रहे हैं, आज तक खड़े हैं महाराज। बोलो, तो कहने का भगवान का मतलब यहां पर यह है कि इसलिए यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, तस्मात गवाम ब्राह्मणा नाम चेद्राश संभताम मखा या इंद्रयाग संभाराश तैरेयम साध्यताम मखा। कहते हैं इसलिए ये जो गायें हैं, ब्राह्मण हैं या गिरिराज जो हमको जो है उपहार के रूप में मिले हैं, इनका हमको यजन करना चाहिए। और इंद्र यज्ञ के लिए, इंद्र यज्ञ संभवार, कहते हैं इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां हम लोगों ने तैयार की हैं, उन्हीं से जो है साध्यताम मखा, हम लोग जो है इस गोवर्धन यज्ञ को संपन्न करेंगे। और जो आप लोग 56 व्यंजन, जरा समझिए श्रीमद् भागवत में 56 व्यंजन का मतलब क्या है भगवान का कहने का, पच्यताम विविधा पाका सुपांता पाय सादया संयावापूपसाकुल्या सर्वदोहस्य गृह्यताम। कहते हैं पच्यताम विविधा पाका, हम लोग जो है अनेक प्रकार के पकवान बनाए, उसमें पायस यानी खीर है, हलवा है, कूप यानी पुआ है, पूड़ी है, और यहां तक कि मूंग की दाल। यानी भगवान का कहने का मतलब है कि जो कुछ भी परमात्मा ने हमको दिया है, कहते हैं सर्व दोहस्य ग्रह्यताम, पूरे ब्रज का दूध इकट्ठा किया जाए और इस प्रकार से जो है संपूर्ण व्यंजन तैयार किए जाएं, और उसके बाद जो वेदवादी धर्मरक्षक ब्राह्मण हैं उनके द्वारा हवन करवाया जाए। कहते हैं हुयंताम अग्न्यः सम्यक, जो है उनके द्वारा हवन कराया जाए और अनेक प्रकार से जो है उनके यजन को जो है स्वीकार किया जाए। और उसके बाद जो भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही है यहां पर समझने योग्य, क्योंकि सर्वात्म भाव पर ही सनातन धर्म टिका है। कहते हैं इन सबको तृप्त करने के पश्चात, यानी ब्राह्मणों को जो धर्म रक्षक ब्राह्मण है उनको तृप्त करने के पश्चात, अन्येभ्यश्चा स्वचांडाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवसं चागवां दत्त्वा गिरे दीयतां बलि। कहते हैं उसके बाद चांडाल पतित कुत्ते जो भी हैं, यथा योग्य उनके अनुसार जो कुछ है, गायों को चारा और गिरिराज को भी भोग लगाया जाए। हाँ, प्रजा का कोई भी अंग अतृप्त नहीं रहना चाहिए, इसलिए भगवान ने यहां पर चांडाल और पतित दोनों शब्द प्रयोग किए हैं। ऐसा नहीं कि कोई पतित व्यक्ति है तो आप उसको धक्का देके बाहर निकाल दो तो आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी, यही गहना कर्मणो गति है महाराज। जहां पर हम क्या करते हैं, गलती करते हैं महाराज, और इस गलती को फिर हम किस प्रकार से शुद्ध करने की चेष्टा करते हैं, जो उसका बिल्कुल भी रास्ता है ही नहीं, मंदिरों में जाकर लंबी लंबी लाइनें लगाना, कोई जो है उपवास करना, कोई अनुष्ठान करना, और तरह तरह के अनुष्ठानों से, उपवास से, तरह तरह के प्रयाश्चितों से महाराज हम अपने आप को या भगवान को तृप्त करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के पश्चात फिर जो है सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर गिरिराज गोवर्धन की क्या की जाए, परिक्रमा की जाए, क्योंकि भगवान जो है उस गिरिराज की रक्षा करना चाहते हैं। ध्यान देना, ये जो सारी कथा भगवान सुना रहे हैं किसके लिए, उस गिरिराज की रक्षा के लिए, क्योंकि ये जो हम पर्यावरण का रोना रोते हैं ना, भगवान ने उन बिना पढ़े लिखे लोगों को महाराज ये विज्ञान पढ़ा दिया, लेकिन आजकल पढ़े लिखे को समझाना है समस्या कि नहीं, लेकिन भगवान ने केवल एक गिरिराज की रक्षा के लिए इतना बड़ा उपक्रम रचा महाराज, अपने पिताजी को समझाया और गोप वृंदों को समझाया कि हमको क्या करना है, क्योंकि जो हमारी आजीविका है यदि हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आपने किसी अन्य ईश्वर की कल्पना कर रखी है तो ये आपकी मूढ़ता हो सकती है, शास्त्र का न्याय नहीं हो सकता, है ना, ये शास्त्र न्याय नहीं है, ये आपकी अपनी मान्यता है। भगवान कहते हैं तुम्हारी आजीविका ही तुम्हारा सबसे बड़ा परमेश्वर है, और वास्तविकता में यही आपका गुरु है, और यहीं से ज्ञान का उदय होने वाला है। ज्ञान कहीं अलग से नहीं आएगा महाराज, किसी गुरु की हिम्मत नहीं है कि आपको ज्ञान दे दे। अरे बोलो, इतने दिन हो गए सुनते सुनते सुनते, सारे शास्त्र क्या कर डाले, सुन ही नहीं डाले, रट डाले, सुने या रट भी गए, सब रटा हुआ हमारा, रट गया, लेकिन क्या हमको आत्मानंद की प्राप्ति हो गई? कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने शास्त्र की अवहेलना की है। तो भगवान किस प्रकार से उस इंद्र यज्ञ को पूर्ण करते हैं इसकी चर्चा, क्योंकि अब हमारे पास केवल कहते हैं ना एक दो और तीन हो जाएगा, 30 तारीख को, तो 2 दिन और हैं, तो चर्चा करेंगे जैसा भी होगा। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।